हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। करिश्मा जी को अच्छी तरह एहसास था कि उनके बेटे पर क्या बीत रही थी। उनका बेटा अपनी पत्नी के बगैर एक पल नहीं रह सकता था और अब 7 दिनों के लिए उसे वहाँ रहना था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि तारा की सुरक्षा के लिए अमन का तप करना बेहद ज़रूरी था। विक्रांत रंधावा अमन के ऑफिस में मालिक की हैसियत से बैठा हुआ था। उसे लग रहा था कि अमन का ऑफिस, अमन का कारोबार, अमन का शानदार बंगला सब कुछ उसका हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अमन की बेहद खूबसूरत पत्नी भी हमेशा हमेशा के लिए विक्रांत रंधावा की होगी। ऐसा कहकर विक्रांत रंधावा जोर से हंसा। दूसरी ओर अमन अपना सारा सामान लेकर बगीचे की ओर रवाना हो गया था। हालांकि उसका दिल बहुत दुखी था, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बगीचे में जाना जरूरी था। वो ये सब अपनी प्यारी पत्नी तारा के लिए कर रहा था। जैसे ही अमन बगीचे में पहुंचा, रात के 2 बज चुके थे, मतलब उसके पास पूरा 1 घंटा था। उसने सोचा कि वो अपने दादाजी जिन महाराज से बात करेगा, अपना दिल का हाल बताएगा, क्योंकि वो जानता था कि उसके दादाजी ही हैं जो उसकी कमियों और खूबियों को पहचान कर उसे शक्तिशाली बना सकते हैं। अमन बगीचे में सीधा बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने बरगद के पेड़ के तने को प्यार से छुआ, वहाँ की धरती में कंपन शुरू हो गई। अमन हैरान रह गया, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उस कंपन का क्या मतलब था? अमन ने अपनी बाहें फैलाकर जोर से बोला, हे दादा महाराज, मैं अमन सिंह राठौड़, आपका वंशज, आपसे मदद मांगने आया हूँ। मुझे अपनी पत्नी की रक्षा करनी है। इसके लिए मैं समाधि में जाना चाहता हूँ। मेरे सामने एक अनदेखा दुश्मन है जो बहुत शक्तिशाली है। मुझे उससे भी ज्यादा शक्ति चाहिए ताकि मैं अपनी पत्नी की रक्षा कर पाऊँ। अमन ने अपने आने का कारण अपने दादाजी को बता दिया था। वो जानता था कि उसके दादा जिन महाराज भले ही समाधि में हों, लेकिन वो उसके हर पल पर नजर रखते हैं। लेकिन आज पृथ्वी में आया कंपन कुछ अलग था। आज से पहले भी अमन कई बार वहाँ आया था, लेकिन ऐसा कंपन उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। कंपन की तेजी देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। अमन की विनती के बावजूद उसके दादा जिन महाराज बाहर नहीं आए। ये बात अमन को अजीब लगी। आज से पहले अमन जितनी भी बार वहाँ आया था, एक बार पुकारने पर ही उसके दादा बाहर आ जाते थे। लेकिन आज उसने 2-3 बार पुकारा, लेकिन उनका नामो निशान कहीं नहीं था। ये बात उसे परेशान कर रही थी और उसे लगने लगा था कि कहीं कोई गड़बड़ है। अमन सोच रहा था कि आखिर उसके दादा अभी तक क्यों नहीं आए। उसे किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगा था। उसने गौर किया कि बरगद के पेड़ की पत्तियां काफी मुरझा गई थीं, जबकि पिछले कई 100 सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमेशा से वो बरगद का पेड़ वहां मौजूद था और आज तक उसकी एक भी पत्ती नहीं मुरझाई थी। लेकिन आज क्या हो गया था कि पूरा पेड़ ही मुरझा गया था? अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे कुछ याद आया। वो बरगद के पेड़ के ठीक सामने उल्टा बैठ गया और पेड़ की ओर देखते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, केवल 1 घंटा, ये पता लगाने के लिए कि उसके दादा जिन महाराज कहाँ गए हैं। तभी देखते ही देखते अमन के चारों तरफ एक अजीब तरह की रोशनी निकलनी शुरू हो गई। वो रोशनी किसी और की नहीं बल्कि तिलिस्मी पत्थर की थी। अमन ने अपनी जादुई शक्ति से अपने तिलिस्मी पत्थर को बुला लिया था। तिलिस्मी पत्थर हाथ में लेने के बाद जैसे ही उसने अपने माथे से पत्थर को छूकर बरगद के पेड़ की ओर देखा, उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। बरगद के पेड़ के बहुत मोटे तने के अंदर उसे उसके दादा जिन महाराज दिखाई दे रहे थे। उनके हाथ पैर एक अजीब सी रंग बिरंगी रोशनी से बंधे हुए थे। उनका मुंह भी उसी रोशनी से बंधा हुआ था। ये देखकर अमन के आंखों में खून उतर आया। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई थी जिसने उसके दादाजी की ऐसी हालत कर दी थी? तिलिस्मी पत्थर की शक्तियों से अमन अपने दादा को देख चुका था। वो धीरे से उठा और बरगद के पेड़ के तने को जोर से गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने दादा को गले लगा रहा हो। फिर देखते ही देखते अमन ने तिलिस्मी पत्थर बरगद के पेड़ की जड़ों पर रख दिया। देखते ही देखते बरगद के पेड़ से भी रंग बिरंगी रोशनियाँ निकलनी शुरू हो गईं। लेकिन उसके दादा का केवल मुंह ही उस जादुई काले घेरे से छूट पाया था, जिससे उसके दादा सिर्फ बोल सकते थे लेकिन अभी तक पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए थे। ये देखकर अमन बहुत हैरान हो गया था। उसे इस बात की सबसे ज्यादा हैरानी थी कि आखिर कौन सी शक्ति है जो तिलिस्मी पत्थर से भी शक्तिशाली थी। अमन की नज़र में तिलिस्मी पत्थर से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था, लेकिन तिलिस्मी पत्थर भी केवल उसके दादा का मुंह ही खोल पाया था। ये बात अमन के लिए बहुत आश्चर्यजनक थी। तभी अमन ने अपने दादा को प्रणाम करने के बाद बोला, दादा ये क्या हुआ है आपके साथ, और तिलिस्मी पत्थर भी आपको क्यों नहीं छुड़ा पा रहा है, आखिर ये सब क्या है? अमन की फिक्र भरी आवाज सुनकर उसके दादा जिन महाराज बोले, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तू यहाँ तपस्या करने आया है, पर तुझे नहीं पता तेरे दादा जिन महाराज पिछले 7 दिनों से इसी तरह इस पेड़ के तने में कैद हैं। क्या आप पिछले 7 दिनों से इस पेड़ के तने में कैद हैं? लेकिन क्यों, किसने की है आपकी ये हालत? बस एक बार दादा आप मुझे उसका नाम बता दीजिए, मैं उसकी जान ले लूँगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यहीं आपके सामने उसे भस्म कर दूंगा। अमन बहुत गुस्से में आ गया था। तब उसके दादा जिन महाराज उसे शांत करते हुए बोले, मेरे बच्चे शांत हो जा, गुस्सा इंसान की सूझबूझ और ताकत को खत्म कर देता है, इसीलिए तुझे गुस्से से नहीं होश में काम लेना होगा, क्योंकि एक मायावी शक्ति ने मुझे यहाँ कैद किया है, वो शक्ति मुझसे, इनफैक्ट जितनी भी काली शक्तियाँ हैं उन सबसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये बात भी अमन के लिए बहुत शॉकिंग थी। फिर अमन ने कहा, लेकिन मैं तो यहाँ 7 दिनों की तपस्या के लिए आया था, क्योंकि मेरी पत्नी के पिछले जन्म का राजा विक्रम सिंह लौट आया है, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी पत्नी को कोई नुकसान पहुँचाए, इसीलिए उसकी रक्षा करने के लिए मैं यहाँ शक्तियाँ हासिल करने आया था, लेकिन यहाँ आपकी हालत देखकर मेरा दिल और दिमाग काम करना बंद कर दिया है। अमन की बात सुनकर उसके दादा बोले, बेटा तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तेरी जानकारी के लिए बता दूँ, जिस राक्षस से लड़ने के लिए तपस्या करने तू यहाँ आया है, उसी राक्षस ने मेरी ये हालत की है। ये बात भी अमन के लिए बहुत हैरानी भरी थी। फिर जिन महाराज अपनी यादों में खो गए। हुआ ये था कि 7 दिन पहले जैसे ही तारा ने ये तय किया था कि वो राक्षस के अंश के बारे में जिन महाराज से पता करेगी और ये पता लगाएगी कि वो राक्षस का अंश किसके अंदर मौजूद है, और साथ ही करिश्मा जी के पति के बारे में भी पता लगाएगी, लेकिन पिछले 6-7 दिनों में उसका बगीचे में आना ही नहीं हुआ था, क्योंकि इस बीच उसकी माँ बनने की खबर मिल गई थी। उसके बाद से अमन ने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। उसके बाद विक्रांत रंधावा को इस बात का एहसास हो गया था कि तारा जरूर उस बूढ़े जिन के पास जाकर उसके बारे में पता करने की कोशिश करेगी, इसीलिए विक्रांत रंधावा एक अलग रूप लेकर बगीचे में चला गया था, और बगीचे में जाकर उसने बरगद के पेड़ के सामने जाकर बदतमीजी से बोला था, ए बूढ़े जिन बाहर निकल।
अमन के दादा जिन महाराज गुस्से से बाहर आए थे और उन्होंने विक्रांत रंधावा से कहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की, क्या तू नहीं जानता कि हम कौन हैं? क्योंकि उस वक्त उसके दादा को भी नहीं पता था कि जिसने बदतमीजी से उनके सामने बात की है वो कोई और नहीं बल्कि परीलोक का वही राक्षस का अंश है जिसकी वजह से उसे मारने के लिए तारा परी इस पृथ्वी पर आई थी। और जिन महाराज इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उस राक्षस का मुकाबला कर सकें।